आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने शेष जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जीवन अच्छा बनता है जो हमारी दृष्टि अच्छी होती है। हमारे जीवन में कितना भी हम ज्ञान हासिल कर लें, कितना भी व्रत नियम संयम धारण कर लें, लेकिन यदि हमारी दृष्टि ठीक नहीं है तो वो हमारा ज्ञान और हमारी वो व्रत नियम और संयम हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी पर है ऐसा ही। असल में ज्ञान जब तक श्रद्धा से समन्वित ना हो या कि आचरण जब तक श्रद्धा पूर्वक न धारण किया जाए तब तक वो ज्ञान और आचरण हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाता। इसलिए दृष्टि प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। जीवन को अच्छा बनाने की दृष्टि और जीवन की वास्तविकता क्या है ये उस दृष्टि से ही दिखाई पड़ सकती है यदि वो दृष्टि हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए। एक बगीचे में बहुत लोग जाते हैं, लकड़ी बेचने का धंधा करने वाला जब बगीचे में जाता है तो उसे क्या दिखाई पड़ता है? बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, ये सूख जाएंगे तो इनकी जो लकड़ी है वो बेच करके मुझे बहुत संपत्ति प्राप्त होगी। और उसी बगीचे में फलों का बेच करके व्यापार करने वाला जाएगा तो वो ये सोच रहा है कि इन फलों की इन वृक्षों की बहुत सेवा की जाए, इनमें खाद पानी दिया जाए तो ये वृक्ष बहुत फलवान बनेंगे और जितने ज्यादा फल लगेंगे उतना मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और अगर फूलों का व्यापारी वहां जाएगा तो वृक्ष पर आने वाले फूलों को देख करके प्रसन्न होगा कि बहुत फूल लगे हैं, मैं इन्हें बेच करके अपनी रोजी रोटी कमा लूंगा। और उसी बगीचे में बैठ करके कोई कवि फूलों की सुंदरता उस पर अपने अपने विचार व्यक्त करके कोई काव्य रचना भी कर सकता है, और वहीं उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई आत्मज्ञान को प्राप्त करने की साधना करने वाला अपनी मुक्ति का उपाय भी कर सकता है। जिसकी दृष्टि जैसी है वो वही चीज प्राप्त कर लेगा। इसलिए बहुत महत्व है इस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने का। एक कमरे में एक पक्षी घुस जाता है खिड़की से, सोचता है वो कि भीतर कुछ खाने पीने की चीज मिलेगी, नहीं मिलती, इधर उधर परेशान होता है, फिर सोचता अब चलूं मैं बाहर यहां से, तो बाहर निकलने की जब सोचता है तो घबरा जाता है कि कहां से निकलूं। भीतर कमरे में जो व्यक्ति बैठा है वो उसकी गैर बुद्धिमानी पर हंसता है कि अरे बुद्धू, जिस खिड़की से भीतर आए हो उसी से बाहर निकल सकते हो आराम से, अब कहां ज्यादा सोच में पड़े हो। तो वो उसको इशारा करता है कि उस खिड़की से निकल जाओ, लेकिन उसे समझ में नहीं आती बात। उसे तो एक ही बात समझ में आती कि जिस खिड़की से आकर के मैं यहां इस कमरे में फंस गया उससे कैसे निकलूंगा। और लॉजिक तो बहुत सही है कि जिस खिड़की ने मुझे फंसा दिया यहां उसी खिड़की से बाहर कैसे निकला जाएगा। पर जरा सा वो अगर एक दृष्टि प्राप्त कर ले, ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है कि जिस खिड़की से भीतर आए हैं उससे कैसे बाहर निकला जाएगा, लेकिन अगर एक दृष्टि ऐसी जागृत हो जाए कि अरे जब मैं आया था तब मेरी दिशा कोई और थी और अब मैं उसी खिड़की से अपनी दिशा बदल लूं, तो दृष्टि बदलने पर दिशा बदलती है और दिशा बदलने पर दशा बदल जाती है। बस इतनी सी ही चीज है। ये हमारे जीवन में दृष्टि को बदलने का सबसे पहला प्रयत्न हमें करना चाहिए, और उसके लिए बहुत आसान सा तरीका हमने अपनाया है कि हम जिन्होंने उस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करके अपने जीवन की परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है उन भगवंतों के चरणों में बैठें, और जो अपनी दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने में लगे हैं, साधनारत हैं आत्म प्राप्ति के लिए, उन गुरुजनों के चरणों में बैठें और जिनेंद्र भगवान की वाणी जो कि हमें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने में, जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनती है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, और रोज रोज इस प्रक्रिया को हम दोहराएं। ये तीनों हमें जिस तरफ जाने का इशारा देते हैं, हम उस चीज को पहचाने तो हमारी दृष्टि निर्मल होती चली जाएगी और हमारे भीतर बहुत सारी अच्छी बातें आनी शुरू होंगी। और हमने देखा है कि हाँ, जब हमें ऐसी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो गई तो हमारे जीवन में पहले तो छोटी छोटी विपत्तियां भयभीत कर देती थीं, अब कोई भय नहीं है। पहले तो जरा सा कोई मोक्ष मार्ग के बारे में कुछ पूछता था तो मन डमाडोल हो जाता था, अब तो बहुत अकंप हो गया है मन, मेरे अपने कल्याण की दृष्टि मिल जाने पर कल्याण का मार्ग सूझ गया है। अब कोई चाहे कितने भी बातें उस मार्ग के बारे में बताए पर मैं भ्रमित नहीं होता हूं, मैं निशंक होकर के उस मार्ग पर चलता हूं। और इतना ही नहीं, मेरी आकांक्षाएं अब इतनी नहीं रही कि मैं उन आकांक्षाओं के चलते अपने मार्ग को ही छोड़ दूं। मैं अपने मार्ग पर चलते हुए थोड़ी बहुत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो आकांक्षा करता हूं, पर अब ऐसी कोई आकांक्षा मेरे जीवन में नहीं रही जो कि मेरा अकल्याण करने वाली हो या दूसरे का अपकार करने वाली आकांक्षा, ऐसी आकांक्षाएं मेरे भीतर शेष नहीं रही। और ना ही अब सच्चाई के रास्ते पर, अपने जीवन को अच्छा बनाने के रास्ते पर चलने वाले के प्रति
मेरे मन में कोई ग्लानि उत्पन्न होती है। घृणा दो तरह की होती भैया, एक तो किसी खराब सी चीज को देख करके घृणा होती है और एक दूसरे के गुणों को देख करके भी घृणा होती है। ये जरा कठिन मामला है। विचिकित्सा, दूसरे के गुणों को देख करके ईर्ष्यावश हम ग्लानि और घृणा कर लेते हैं, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बचपन से पूरी जिंदगी यही अभ्यास सिखाया जाता है। दूसरे के गुणों को सहन करने की हमारी सामर्थ्य हमें नहीं सिखाई जाती, दूसरे के गुणों को देखकर उसमें प्रसन्न होने की बात हमें नहीं सिखाई जाती, बल्कि दूसरे को डिफीट करके और आगे बढ़ने की बात सिखाई जाती है और वो बात हमारे भीतर घृणा उत्पन्न करती है। ईर्ष्या और घृणा, ये दोनों ही एक ही मान कषाय के दो रूप हैं। और इसलिए आचार्य भगवंतों ने गुणवत्ता या गुण प्रीतिर्मता ऐसा शब्द लिखा कि हमारी गुणों से प्रीति होने लगे, हम दूसरे के भीतर अगर गुणों को देखने लगे तो उसके अवगुणों को देखकर हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी, हम घृणा नहीं कर पाएंगे। और मोटा मोटा हिसाब है कि दिखता क्या है, देह दिखती है, तो उस देह से ग्लानि नहीं करना या देह से आसक्त नहीं होना, ये दृष्टि हमें प्राप्त हो गई। थोड़ा और आगे बढ़े, इतना सब होने के बाद भी कभी कभी मेरे अपने मन में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि मेरे जीवन का भला करने वाली नहीं है। मैं जानता हूं ये मेरा भला नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता। एक संस्कार मेरे भीतर इस तरह का है जो विवेक को जागृत नहीं होने देता। मैं एनालाइज तो कर लेता हूं कि हे क्या है, उपादेय क्या है, लेकिन हे को छोड़ने और उपादेय को ग्रहण करने का विवेक मेरे भीतर नहीं आ पाता है। और अगर दृष्टि निर्मल हो जाए तो ये विवेक हमारे भीतर आने लगता है और अविवेक छूटता चला जाता है, मूढ़ताएं हटने लगती हैं और अमूढ़ दृष्टि हमारे भीतर अपने आप उद्घाटित होने लगती है। मूर्ता के मायने हैं अविवेक और अमूढ़ के मायने हैं विवेक पूर्ण दृष्टि। फिर छोटी छोटी सी चीजों में लेकर के हम, और जैसे अपन भ्रमित हो जाते हैं जरा सी चीज में, ये पूजा में फूल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, ये आरती का दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, और पता नहीं कितनी इस तरह की चीजें हैं। अब मेरे मन में कोई उलझन नहीं है, अब कोई कुछ भी बतावे, मेरा विवेक जागृत हो गया है, मैं जो भी करता हूं अब विवेक पूर्वक करता हूं। विवेक शून्य होकर के भली क्रिया भी की जाए तो फल शून्य मिलता है, और विवेक पूर्ण होकर के विवेक पूर्ण दृष्टि से अगर कोई चीज की जाए तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। इसलिए दृष्टि की निर्मलता से ये चौथी गुणवत्ता मेरे भीतर प्रकट होने लगी है, मुझे सब चीजें बहुत स्पष्ट होने लगी हैं। अब कहीं कोई मेरे मन में भ्रम या कि अविवेक शेष नहीं रहा है, चाहे फिर वो भगवान के बारे में हो, चाहे वो गुरु के बारे में हो, चाहे वो शास्त्र के बारे में हो, मेरे मन में कोई सुपरस्टिशन नहीं है। इन सब के प्रति भी मेरी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है, मेरा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, मैं उस अंधविश्वास से ऊपर उठने लगा। अब मैं मंत्र तंत्र से होने वाले छोटे मोटे चमत्कार से प्रभावित नहीं होता, अब मैं किसी सांसारिक वैभव और उपलब्धि को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होता। सम्यक दृष्टि किसी के अपार वैभव को, यहां तक कि चक्रवर्ती जैसे वैभव को देख करके भी आश्चर्यचकित नहीं होता, यह दृष्टि है सम्यक दृष्टि की, क्योंकि यह सब पुद्गल का ठाट बाट है। चेतना का वैभव जिसने एक बार देख लिया है वो पुद्गल के इस ठाट बाट में ज्यादा रमेगा नहीं, ये दृष्टि मेरे भीतर उत्पन्न हो। फिर कोई भी चीज मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। 363 मत मतांतर हैं, लेकिन मैंने जिस वीतरागता के मार्ग को चुन लिया है, अब कितने भी बाइफर्केशंस आए, लेकिन मैं अपने रास्ते पर ठीक ठीक चलता रहूंगा। का पथे पति दुखा नाम, का पथस्ते संपत्ति असंप्रति रणुत कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। एक ऐसी विवेकपूर्ण दृष्टि मेरे भीतर उत्पन्न हो गई है कि का पथे पथि दुखा नाम, जो दुख के उन मार्ग हैं, का पथ यानी उन मार्ग जो कि दुख देने वाले हैं, जानता हूं कि इस मार्ग पर चल करके मुझे आज तक दुख मिला है और आगे भी मुझे उन मार्ग पर चलने पर दुख मिलेगा। दुख का मार्ग कौन सा है? सूत्र जी का सूत्र याद कर लेवे कि हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। और ये जितने भी हिंसा झूठ चोरी इत्यादि पाप हैं, दुख में हुआ, इस मार्ग पर चल करके मैं सिर्फ दुख पाऊंगा, यही विपरीत मार्ग है। और उस विपरीत मार्ग पर चलने वाले, यानी हिंसा के रास्ते पर, झूठ के रास्ते पर, चोरी के रास्ते पर, इन रास्तों पर चलने वाले और इस रास्ते के प्रति मैं मन वचन काय से कोई अपनी सहमति भी प्रकट नहीं करूंगा। असंप्रप्ति अनुत्कीर्ति, न मन में उनकी प्रशंसा का भाव, न वाणी से उनके गुणगान, और न ही शरीर से उनको साधुवाद। ऐसा विवेक मेरे भीतर उत्पन्न हो जाएगा। अब टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली दृष्टि नहीं रही है कि सब समान है। राग और वीतराग को एक ही तराजू पर नहीं तोलूंगा। वीतरागता का मार्ग अलग है, बाकी सब मार्ग जो राग द्वेष के मार्ग हैं, वे सब संसार बढ़ाने वाले मार्ग, मेरे दुखों को बढ़ाने वाले मार्ग हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है मेरी दृष्टि में। सो मुझे उन मार्गों के प्रति द्वेष नहीं है, मैं तो सिर्फ सच्चे मार्ग को जान करके उस पर चलता हूं, और किसी भी मार्ग के प्रति मेरे मन में द्वेष भी नहीं है तो राग भी नहीं है। सिर्फ जानता हूं, देखता हूं उन सब मार्गों को, उनके प्रति तटस्थ होकर के देखता हूं, कोई आसक्ति या कि द्वेष उनके प्रति अपने मन में प्रकट नहीं करता। ऐसी दृष्टि हमारे भीतर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आज सब देख करके और लगता है कि बहुत कठिन है। आज तो जरा से में हम प्रभावित हो जाते हैं, जरा जरा छोटी छोटी सी सांसारिक उपलब्धियां लोगों की देख करके हम सोचते हैं कि लगता तो है ये भी ठीक है, तो कुछ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक उपन्यास में लिखा कि उनने जब सुना कि कोई साधु ने बहुत तपस्या के द्वारा उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, सोचा कि मिल लिया जाए कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं, पूछा कि मालूम पड़ा है तपस्या से आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की? बोले हां की। जिसको उपलब्धि हासिल होती है वो उसे कहने से बचता है, और जिसको हासिल नहीं होती उसको कहना पड़ता कि हो गई हासिल, तब तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो हो ही नहीं तो कैसे मालूम। हां हो गई है हासिल, तो क्या क्या उपलब्धियां हासिल की आपने? मैं चाहूं तो पानी पर चल करके उसे पार कर सकता हूं, और कौन सी उपलब्धि? अरे और की बात कर रहे हो क्या, ये कम है क्या? अब वो गड़बड़ में आ गया, उन्होंने तो यह सोचा था कि जैसे ही मैं कहूंगा कि पानी पर मैं चलना प्राप्त करने की विद्या मैंने हासिल कर ली है पानी पर चलने की, तो ये बड़े चमत्कृत होंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि और, जैसे को कोई नई कार खरीद के लाए, नया वाला मॉडल, और किसी को दिखाए कि मैं ये लाया हूं, और वो कहे सो व्हाट, सो मैं क्या करूं, धरे रहो, तो कैसा लगता, कहां फेंके उसको, ये बेकार हो गई बिल्कुल, बताइए। तो ऐसे उसको लग रहा है कि क्या करूं, ये कह रहे हैं कि और कौन सी उपलब्धि, अब ये क्या कम है क्या? तो उसने कहा कि ये क्या कम उपलब्धि है? तो उसने कहा नहीं, और कोई हो तो बताओ। उसने कहा नहीं बस इतनी ही है। तब तो फिर ये दो पैसे की उपलब्धि है। दो पैसे की उपलब्धि, मैंने 12 साल लगा दिए तपस्या में तब जाके ये विद्या हासिल हुई, तुम कह रहे दो पैसे की। बोले हाँ दो ही पैसे की, क्योंकि वो जो सामने नदी बह रही, मैं नाविक को दो पैसे देता हूं तो उस पार हो जाता हूं, तुमने क्या किया दो पैसे ही का काम तो किया। अगर नाव, अगर इधर से उधर आप चल के जाते हैं नाव में तो दो पैसे तो लगते हैं, आपने क्या हासिल कर लिया। ये है विवेकपूर्ण दृष्टि। हमें किसी सांसारिक उपलब्धि के लिए मोक्ष मार्ग पर नहीं चलना है, ये विवेक जागृत हो जाए। मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं उस मार्ग पर तो मुझे अपने आत्मा को ही प्राप्त करना है, मेरा अपना हित उसी में है। अपने हित और अहित का विवेक मेरे भीतर जागृत हो गया, कल्याण अकल्याण का विवेक मेरे भीतर जागृत हो गया। और इतने ही नहीं, ये तो सब जानते हैं, भला बुरा कौन नहीं पहचानता भैया, सब भला बुरा पहचानते, लेकिन दृष्टि उसकी निर्मल है जो भले को भला जान करके ग्रहण कर लेता है और बुरे को बुरा जान करके छोड़ देता है। तब मानिएगा कि आपने कोई दृष्टि प्राप्त की, वरना क्या। हाथ में दीपक लेकर के और कुएं में गिर जावे तो उस दीपक का क्या काम, उस ज्ञान का क्या क्या उपलब्धि उसकी। फिर तो एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में जैसे कहीं गिर जावे तो वैसा ही हम रोशनी वाले होकर के भी और गिर जावे तो हम में और उसमें क्या अंतर। मंदिर आने वाले और मंदिर नहीं आने वाले में थोड़ा अंतर तो मालूम पड़ना चाहिए, आज नहीं दिखता अंतर। धर्म की दो बातें सुनने वाले और नहीं सुनने वाले में अंतर तो दिखना चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ दृष्टि की निर्मलता। हमारे अपने जीवन में भी ऐसे ही हमें देखना चाहिए कि कल तक मैं मंदिर नहीं जाता था तब मेरी अपनी लाइफ स्टाइल क्या थी, और आज जब मैं श्री गुरु और भगवंत के चरणों में बैठने लगा हूं तो मेरी दृष्टि में क्या परिवर्तन आया है। मेरी दृष्टि अब बाहरी चीजों से प्रभावित होती है या नहीं होती है। मैंने अपने देव का जो स्वरूप तय करके रखा है मैं उसको लेकर के कहीं भ्रमित तो नहीं होता हूं। मैं बहुत सारी लोक में प्रचलित मान्यताओं में धर्म तो नहीं मान लेता हूं। मैं संसार बढ़ाने वाले गुरुओं को अपना मोक्ष मार्ग का गुरु तो नहीं मान बैठता हूं। मैं हिंसा और राग द्वेष का प्ररूपण करने वाले ग्रंथों को मोक्ष मार्ग का सहयोगी ग्रंथ तो नहीं मान लेता। ये बहुत आवश्यकता है। वर्तमान में हम बहुत जल्दी इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं मन वचन काय से हम उनका समर्थन कर देते हैं। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि में प्रसिद्ध हुई, कितनी तो कोशिश करी उस देव ने कि आज ये चीज आई है चलो आज ये चीज दिखाऊं चलो, और एक दिन तो जब सब चीजें इनकार कर दिया तो समोशरण की रचना लगा दी कि चलो समोशरण आया है भगवान का। रेवती रानी ने हंस करके कहा कि हो चुके 24 तीर्थंकर, चौथा काल व्यतीत हो गया, अब कोई समोशरण नहीं आ सकता, मुझे नहीं जाना। अपन तो जरा जरा सी चीजों में चमत्कृत हो जाते हैं भैया। जरा अपनी दृष्टि को देखना बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी रखना पड़ेगी कि मैं किस दृष्टि से देख रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीजों में मैं धर्म मान रहा हूं। संसार को संसार की दृष्टि से देखना, संसार में सुख है, ये हमारा भ्रम है। वीतरागी भगवान वीतरागी है, उनकी वीतरागता मेरे लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाएगी, और जो रागी है उनको रागी की दृष्टि से देखूं, कहीं ऐसा ना हो कि वीतरागता की दृष्टि से देखने लगे। आपका सागर स्नान मुच्चह चिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातस्य लोक मूलम निगद्यते वरोपलिप्सासावान रागद्वेष मलि मशा देवता द्विपासीत देवता मूढ़ मुच्यते सग्रंथारंभ हिंसाराम संसारा वर्तवर्तिनाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। संसार में बहुत मान्यताएं हैं, गिरी पातोग्नि पातस्य पर्वत के ऊपर से लुढ़क करके अपने प्राण दे देना इसमें धर्म है। नदी में डुबकी लगा करके और पवित्र हो जाएंगे यह मानना इसमें धर्म मानना यह एक और लोक मूर्ता है, यह अविवेक है, जिसका कि हम कहीं ना कहीं से मन वाणी और शरीर से अगर समर्थन भी करते हैं तो हम भी उसी में शामिल हैं। अभी हमारा अविवेक गया नहीं है, ये बात सावधानी रखनी पड़ेगी। हमने देखा था उदयगिरी खंडगिरी में, वहां जो गुफाएं हैं और उनके पास में जो जंगल है उसमें हम लोग आचार्य महाराज के साथ में एक महीने तक रहे। ऐसी जगह बैठ जाते थे जहां कोई को पता ही नहीं लगता था, शाम को लौट के आते थे तब मालूम पड़ता था महाराज कहां थे, आप दिन भर मिले ही नहीं, बस बैठे थे वहीं पर। ऐसी ऐसी जगहें थी वहां। तो एक दिन हम लोग बैठे थे और देखा हम लोगों ने जहां हम बैठे थे जिस गुफा के बाहर, तो वहां पर और छोटा सा पत्थर, उसके ऊपर बड़ा पत्थर, बड़ा सारा पत्थर, फिर और बड़ा पत्थर, ऐसे रखे हुए थे, इतने इतने टीले बने हुए थे। पूछा क्या बात है, ये क्यों बने हुए? बोले यहां तक नदी का पानी आ जाता है और ये बनाने वालों की धारणा ये है कि छोटे पत्थर पर बड़ा, उस पर और बड़ा, जितने बढ़ाते जाओगे उतने स्वर्ग मिलेंगे, इसलिए ये एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। ये मान्यता वहां प्रचलित है, सैकड़ों लोग हजारों लोग इस बात के लिए आते हैं कि जितने जमा लोगे उतने ऊपर स्वर्ग मिलेंगे। बताइए, ऐसी बहुत सी लोक में रूढ़ियां, रिचुअल्स जिनको कहते हैं, जिनके पीछे कोई विवेक नहीं है, ऐसी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं, उनमें धर्म नहीं मानना। भैया मान्यताएं हैं सो रहे, मुझे उससे क्या, पर मैं उसमें धर्म नहीं मानूंगा, ये मेरी दृष्टि है, अपनी दृष्टि है, मैं उसकी बुराई भी नहीं करूंगा, लेकिन उनमें धर्म है यह भी स्वीकार नहीं करूंगा। बरोपलुप सासावान, जो शाप देते हैं और वरदान देते हैं और स्वयं अभी राग द्वेष से जिनका चित्त मलिन है, उसे मैं कैसे अपना भगवान मान लूं? नहीं, भगवान तो मेरे वीतरागी हैं, जो शाप नहीं देते और अनुग्रह भी नहीं करते हैं। कोपावेशो न तब न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवान अपेक्षम आज्ञावश्यम तदभि भुवनम सन्निधिर वैरहारी कैवं भूतम भुवन तिलक प्रारभम तत्परेषु। आपके जैसा वैभव हमने संसार में किसी का नहीं देखा। कोपावेशो न तब कापि देव प्रसादो, ना आप किसी से क्रोधित होकर उसका बिगाड़ करते हैं, ना किसी पर प्रसन्न होकर के उसका उपकार करते हैं, आप अत्यंत उदासीन हैं। आपकी यही चीज मुझे बरबस आपके पास लाती है। दुनिया में तो वे लोग माने जाते हैं, उनसे लोग डरते हैं जो श्राप दे देते हैं, तो भयवश उनके चरणों में पड़े रहते हैं कि श्राप न दे दें, उपद्रव न कर दें। और या कि जिनसे कुछ काम संसार का बनता है उनकी आज्ञा मानते हैं कि भैया मान लो काम बनेगा इनसे, लेकिन आप तो ना किसी का उपकार करते हैं ना किसी का अपकार करते हैं, फिर भी लोग आपकी आज्ञा मानते हैं। ये वैभव, ये प्रभाव हमने और कहीं किसी का नहीं देखा है, ये वीतरागता का प्रभाव है, ये हमारे भीतर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सग्रंथारंभ हिंसारंभ संसारावर्तवर्ती नाम, जो अभी सब प्रकार के परिग्रह में लिप्त है और पांच पापों को जिन्होंने नहीं छोड़ा है, उनके चरणों में बैठ करके क्या मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा? मैं उसे उन्हें कैसे अपना गुरु मान सकता हूं? ऐसी दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई, ये कहलाती है अमूढ़ दृष्टि। इसके बारे में बहुत आराम से विचार करना, कहीं भी कोई किसी भी के प्रति न द्वेष का भाव है, न घृणा का भाव है, न उसकी निंदा का भाव है, बस एक जो वास्तविकता है उसको जान लिया है, इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इन सब में न उलझ करके जिसमें मेरा कल्याण है उस तरफ मैं जाता हूं। मुझे वक्त ही नहीं मिलता इन सब चीजों के लिए। मेरे पास अब एक ऐसी दृष्टि है कि अगर ये सारी चीजें मैं देखता भी हूं तब भी इनमें मैं उलझता नहीं हूं, इनमें मैं फंसता नहीं हूं, मैं आसानी से आगे निकल करके अपने मार्ग पर बढ़ जाता हूं। भेड़ चाल मैंने छोड़ दी है, वरना सारी दुनिया तो उसी तरह चल रही है जिस तरफ भीड़ है, मापदंड ही भीड़ का बन गया है, सब दूर चाहे कहीं भी हो, क्राइटेरिया है वो, कितने लोग थे भाई? अरे साहब बहुत भीड़ थी। एक बार एक व्यक्ति कहने लगे जबलपुर में कि आचार्य श्री का क्या प्रभाव है महाराज मेरे ही सामने, सोचो आप, मुझे प्रभाव बता रहे हैं कि लगे आचार्य श्री का क्या प्रभाव है महाराज, और आज तो 20,000 जनता थी प्रवचन में। मैंने कहा कि एक बार फिर सोच लो मेरे सामने कह रहे। बोले नहीं 20 ही थी महाराज, 20 से कम नहीं थी। वो ये सोच रहे थे कि महाराज ये कह रहे हैं कि शायद कम थी, नहीं कह रहे महाराज 20 ही थी बिल्कुल, 20,000 जनता प्रवचन सुन रही थी। तो हमने कहा एक बार और सोच लो, क्या महाराज 20,000 जनता प्रवचन सुनने आई इसलिए हमारे महाराज बड़े हैं? कहने नहीं नहीं मेरा आशय ये है कि इतनी जनता आई। तो हमने कहा और हमने सुना है कि परसों जब राजीव गांधी आए थे तब तो 2,00,000 जनता आई थी, तो बेज्यादा बड़े हो। अगर भीड़ ही क्राइटेरिया है, कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं अपन इन छोटी छोटी चीजों से। मैं ये इशारा कर रहा हूं आपको, अपने भीतर झांक करके देखना मन कितनी जल्दी और वचन से भी कितनी जल्दी कहने में आता कि कुछ भी हो लेकिन है तो यार कुछ तो बात है, इतनी नहीं तो कैसे जुड़ती भीड़ है। हाँ ऐसा आ जाता मन में, हम जो सच है उसका ही समर्थन करेंगे, हम बुरे की निंदा नहीं करेंगे लेकिन हम बुरे का समर्थन भी तो नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाने निकले हुए हैं तो जहां जहां अच्छाई है उसका समर्थन करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे बनने निकले हैं और अभी हम बुराइयों का समर्थन करते चले जावे, तब तो फिर हम कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छे बनने के लिए पहले जरूरी है कि जब मैंने बुराइयों को बुराई जान लिया है, पाप को मैंने पाप जान लिया है, तब मेरी दृष्टि में अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे धर्म मान लूं। भैया पाप को पाप जान करके करेंगे तो एक दिन बच भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम पाप को पुण्य मान के करने लगते हैं उस दिन फिर बचना बहुत कठिन होता है। इसलिए कह रहा कि ये दृष्टि तो हमें प्राप्त हो ही जानी चाहिए। परिग्रह को परिग्रह ही मान करके हम अपने पास रखे हुए हैं, परिग्रह में पुण्य है ऐसा मान करके अगर हम उसे रखते हैं तो वो परिग्रह हमारे लिए नीचे डुबाने वाला है। चक्रवर्ती अपार वैभव के बीच और गद्दी पर बैठे बैठे मरे तो चक्रवर्ती को भी नरक जाना पड़ता है, और अगर वही चक्रवर्ती उस अपार वैभव को छोड़ करके जिन दीक्षा ले ले तो उसी भाव से मुक्ति भी हो जाती। परिग्रह को परिग्रह माना उसने, आशक्त नहीं हुआ। इतनी सी ये वही सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ दृष्टि बदल गई, कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन दृष्टि बदल जाने से तो पूरी सृष्टि ही परिवर्तित रूप में दिखाई पड़ेगी। मैं भेड़ चाल की वो घटना हमेशा सुनाया करता हूं लोगों को इस अवसर पर, वैसे सबको मालूम ही होगा, कुछ लोगों ने सुन भी रखी होगी। स्कूल में गुरुजी पढ़ाया करते थे बच्चों को, गांव का स्कूल था, और एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे, जोड़ घटाना पढ़ा रहे थे। तब बच्चों को पढ़ाना हो, छोटे बच्चों को तो कैसा पढ़ाना पड़ता कि बताओ एक चॉकलेट और एक चॉकलेट मिलकर कितनी चॉकलेट होंगी, वो फौरन कह देते कि 2, क्योंकि उनको मालूम, और आप ऐसे पूछेंगे तो नहीं बनेगा उनसे। तो ऐसे ही गुरुजी गांव के बच्चे हैं इसलिए ये सोच करके उनको पढ़ा रहे थे, पूछा कि बच्चों ये बताओ एक बाड़े में 10 भेड़े हैं, उसमें से अगर एक भेड़ निकल जाए तो उस बाड़े में कितनी भेड़े बचेंगी? कोई भी कह देगा 10 में से एक ज्ञानो। और गुरुजी ने धोखे से उसी बच्चे से पूछ लिया जिसके घर में भेड़े पली थी। सो जैसे ही उसको खड़ा किया और पूछा कि बता उत्तर क्या हुआ इसका, कहता 0, एक भी नहीं बचेगी। उसने कहा अजीब हो, इतने दिन से सिखा रहे हम तुम्हें गणित, रहे तुम बुद्धू के बुद्धू, फिर से सुनो, एक बाड़ी में 10 भेड़े हैं उसमें से एक निकल गई, कितनी बची शेष? उसने कहा एक भी नहीं गुरुजी। निकल तुम गणित नहीं जानते? तो उसने कहा कि गुरुजी गणित की तो आप जानो, भेड़ों की हम जानते, अगर एक भी निकल गई तो उसके पीछे सब निकल जाएंगी, एक नहीं बचेगी। ये कहलाती भेड़ चाल। हंसी आती इस पर अपन को, भेड़ों की चाल पर, लेकिन अपनी चाल पर कभी कभी हंसी नहीं आती कि अपन भी तो ऐसे ही बिना विवेक के और कुछ भी करते चले जाते, अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाते उसमें, अपना विवेक नहीं लगाते उसमें। जो आया जिसने जो समझा दिया, किसी ने कहा कि तीन चावल नहीं करना चाहिए स्थापना, हमने कहा बात तो सही, नई बात बता रहे, हमने बंद कर दी, लो साहब स्थापना बंद। कितनी जल्दी कोई आया, उसने जो भी प्रारूपण किया हमने उसको मान लिया और आंख मीच करके उसको करना शुरू किया, कल के दिन कोई और आया उसने कोई और प्रारूपण किया हमने वो मान लिया। अरे अपना कोई बेस है कि नहीं, हमारा अपना कोई कॉन्शियस किस चीज को अलाउ करता है ये हमने कभी देखा कि नहीं देखा? हमारी अपने भीतर भी तो चेतना है, उसमें कोई विवेक है कि नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इदम करणीयम इदम आचरणीयम इदम ना करणीयम इदम ना आचरणीयम, ये मेरे विवेक से किसी के कहने सुनने से नहीं, ये दृष्टि मुझे प्राप्त करने, फिर उसके बाद कोई भी कुछ भी कहता सुनता रहे मैं उसमें से अपने काम की चीज निकाल लूंगा उलझूंगा नहीं। ये विवेक मेरे जीवन को सुलझाने वाली प्रक्रिया है, ऐसी सुलझी हुई दृष्टि है। आज हम छोटी छोटी चीजों में उलझ गए हैं, अपने ही राग द्वेष में हम उलझे हुए हैं, जबकि उस राग द्वेष से ऊपर उठने की दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए थी, वो कहलाएगी विवेकपूर्ण दृष्टि, जिसमें कि हम उलझते नहीं है संसार के प्रपंच में, संसार के राग द्वेष में नहीं उलझते हैं, बल्कि राग द्वेष से पार होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसी भावना के साथ मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है कि हम सब एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करें जिसमें अपना स्वयं का विवेक हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत जिंदगी गुजर गई, सबके कहे अनुसार तो करके देख लिया, क्या मिला? ऐसा आता कभी मन में टू एनफ, बहुत हुआ? एक ही व्यक्ति ने मेरे से कहा था एक बार गढ़ा कोटा के चतुर्मास के बाद कि बहुत सुन लिया आपको भी और बहुत सुन लिया बहुत लोगों को, अब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको भी नहीं सुनूंगा, अब तो ये बताओ करना क्या है। हाँ, कब तक ये मन में आना चाहिए कि कितनी बातें जानता हूं अपने कल्याण की और ये कब तक जानता रहूंगा? जानते ही जानता रहूंगा कि कुछ करूंगा अपने जीवन, ये विवेक मेरे भीतर जागृत होना है। अब आज ही से शुरू करता हूं, ऐसा हमारे भीतर एक सुलझा हुआ विचार उत्पन्न होना चाहिए, तब मानिएगा कि हाँ सचमुच हमें दृष्टि प्राप्त हो गई और अमूर्त दृष्टि प्राप्त हो गई। इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में विवेक आए और हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।
तुमसे पावन उपकारी जीवन हम आशु जल से चरणा पखारे, शिर विद्या सागर गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, क्षमा सागर जी महाराज की, भव्य सागर जी महाराज की।
सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने विचारों को स्थिरता और दृढ़ता देने के लिए विचारों की निरंतर प्रक्रिया शुरू की है। विचारों की निरंतरता से हमारे वे विचार स्थिर और सुदृढ़ हो जाते हैं। और जितना जो विचार सुदृढ़ और स्थिर होता है वो हमारे जीवन को उतना अधिक और उतनी ही जल्दी परिवर्तित भी कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर संकल्प पर जोर दिया जाता है। बचपन से ही छोटे छोटे संकल्प ग्रहण कराए जाते हैं जिससे कि हम अपने उन विचारों को निरंतरता देकर और अधिक सुदृढ़ बना दें। रोज मंदिर जाने का विचार, रात में भोजन नहीं करने का विचार, पानी छान कर पीने का विचार, ऐसे कितने प्रकार के विचार हैं। वे विचार अगर निरंतर हों तो उनमें दृढ़ता आती है और उनसे हमारा पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित होता है। सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि हमें किसकी संगति करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए, तो इसमें व्यक्ति की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है कि इस व्यक्ति की संगति करना चाहिए, इसकी नहीं करनी चाहिए। पर हम इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर विचार करें तो हमें किन विचारों की संगति करना चाहिए और किन विचारों से बचना चाहिए, यह भी तो महत्वपूर्ण है। हम हमेशा निम्नतम विचारों की ही संगति करते हैं। जो विचार हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं उन विचारों में हमारी एकाग्रता अधिक समय तक बनी रहती है, और जो विचार हमारे अपने जीवन का उत्थान करने वाले हैं वे आते हैं और आकर के चले जाते हैं। ज्यादा देर तक हम उन्हें स्थिर और दृढ़ नहीं रख पाते हैं। इसलिए विचारों की संगति भी हम करें तो उच्च विचारों की संगति करें जिससे कि हमारा जीवन भी ऊंचा उठे। पानी अगर धूल में गिरता है तो वही कीचड़ बन जाता है, नीम के वृक्ष में गिरता है कड़वा हो जाता है, और वही गन्ने में गिरता है तो मीठा हो जाता, और सीप में गिर जावे तो मोती बन जाता है। संगति व्यक्ति की जितना प्रभाव नहीं डालती उतना अधिक प्रभाव विचारों की संगति हमारे ऊपर डालती है। असल में जिस तरह के विचारों का हम समर्थन करते हैं उस व्यक्ति का भी हम साथ चाहते हैं, उस विचार वाले व्यक्ति का। इसलिए व्यक्ति की संगति बाद में होती है, उसके विचारों से सहमति या असहमति हमारे मन में पहले होती है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम विचारों को, अगर अच्छे विचारों को दृढ़ और स्थिर बनाना चाहते हैं तो हम अच्छे विचारों को निरंतर करें, उनकी ही संगति। निरंतर करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह से बैठ करके शुरू कर दिया संसार में सब चीजें छांबूंगो रे, संसार में सब चीजें छांबूंगो रे, संसार में कोई शरण नहीं, संसार में कोई शरण नहीं, दिन भर ऐसा है क्या? विचारों की निरंतरता का मतलब यह है कि मैं ऐसे अच्छे विचारों पर ही विचार करता रहूं, इनका ही अभ्यास करूं, इनका ही स्मरण मेरे मन में बना रहे पूरे दिन। ये विचारों की संगति या विचारों की निरंतरता, निरंतर चिंतन की प्रक्रिया यही है कि मेरा मन जो शुभ है उसमें लगा रहता है, जो अशुभ है उसमें ज्यादा देर नहीं लगता, जो अच्छाइयां हैं उनमें मेरा मन अधिक समय तक एकाग्र रहता है, बुराइयों से चला भी जाता है तो जल्दी से मैं उसे वहां से हटा लेता हूं। ये अभ्यास है अनुपेक्षा या की भावना का। इस संसार में हम देखते हैं कुछ प्रतिकूलताएं हैं जीवन में, कुछ अनुकूलताएं हैं, और वे प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं बाहर की हैं, यह हमारा ध्यान जाता है कि जो भी प्रतिकूलताएं हैं वे कहीं बाहर से आई हुई हैं, और प्रयत्न क्या करना है उन प्रतिकूलताओं से बचने का या कि उन प्रतिकूलताओं को हटाने का। एक प्रयत्न हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। संयोग जितने भी प्राप्त होते हैं वे सब प्रतिकूल भी हो सकते हैं और अनुकूल भी हो सकते हैं। हम प्रतिकूल संयोगों के आने पर उनको हटाने का निरंतर विचार करते रहते हैं, निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, और जो अनुकूल संयोग हैं उन अनुकूल संयोगों को जुटाने का, वे हमेशा कैसे बने रहे इस बात की हम चिंता करते रहते हैं। हमारा पूरा जीवन अगर हम विचार करें तो अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों के बीच हर्ष विषाद में ही व्यतीत होता है। अनुकूल संयोग मिलने पर हम हर्षित होकर के और उन्हें और अधिक लंबे समय तक बने रह सकें इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं। प्रतिकूल संयोग हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, हम विषाद से भर जाते हैं, उनसे हम द्वेष करने लगते हैं और उस द्वेष को हम बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं। जो प्रतिकूलताएं हैं वे हमारे मन में अगर द्वेष पैदा करती हैं तो वह द्वेष बहुत लंबे समय तक बना रहता है, और इसी तरह जो अनुकूलताएं मेरे मन को हर्ष देती हैं उसे भी मैं बहुत लंबे समय तक बनाए रखना चाहता हूं, और इसी का नाम संसार है और कोई बड़ी चीज नहीं है। यह जो दिखाई पड़ता है यह तो लोक है, और यह जो हम निर्मित करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में हर्ष विषाद और राग द्वेष करके जो हम निर्मित करते हैं वह संसार है। और उस संसार का परिणाम क्या होता है, उस हर्ष विषाद और राग द्वेष का परिणाम क्या होता है? चतुर्गति भ्रमण, पंच परावर्तन। और इसीलिए चतुर्गति भ्रमण या कि पंच परावर्तन को भी संसार कहते हैं। संसरणम इति संसारा, जिसमें निरंतर आवागमन लगा हुआ है, जिसमें जन्म मरण की पीड़ा हमें सदा भोगना पड़ती है, वो संसार है। तो इसमें तो ऐसा लगने लगता है कि ठीक है, अब हम जब संसार में हैं तो जन्म मरण की तो हमको भोगनी पड़ेगी, अब पंच परावर्तन तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि संसार में हैं हम। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह जो जन्म मरण की पीड़ा है, यह जो पंच परावर्तन है, यह चतुर्गति भ्रमण है, उसका कारण क्या है? मेरी अपनी अज्ञानता कि प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों में मैं हर्ष विषाद करता हूं, इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है क्या? लेकिन यह अज्ञान अज्ञान नहीं जान पड़ता। अरे भाई, हर्ष का अवसर आने पर हर्षित होने में कौन सा अज्ञान है, विषाद के अवसर आने पर विषण हो जाना, विषाद से घिर जाना, इसमें कौन सा अज्ञान है? ऐसा हमें मन में लगता है। पर यहां हम अपने जीवन में अपने जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर विचार कर रहे हैं। एक ज्ञानी मोक्ष मार्ग में वो कहलाता है जो अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में हर्ष विषाद नहीं करता, उसे ज्ञानी कहते हैं। यहां तो ज्ञानी की परिभाषा ही अलग है। यहां तो जो जितना कम राग द्वेष करे वो उतना बड़ा ज्ञानी है। यहां बातों को अच्छे से जानने, समझने और समझाने वाला ज्ञानी नहीं है। यहां तो उन बातों को अपने जीवन में घटित करके अपने जीवन को राग द्वेष से मुक्त करने की विद्या सीखने वाला ज्ञानी है। तो वीतराग विज्ञानी ही यहां ज्ञानी है। संसार में सारभूत अगर है तो वीतराग विज्ञान है, और बाकी सब संसार निस्सार है। इसलिए लिखना पड़ा सुख ना ही लगारा, और उसके पहले या विधि संसार असारा। किस प्रकार असार है? इस प्रकार असार है कि मैं यहां पर प्रतिकूल संयोगों से बचने और अनुकूल संयोगों को जुटाने की निरंतर कोशिश में अभी तक कभी सफल नहीं हो पाया हूं, निरंतर असफल ही हुआ हूं। ये तो ठीक ऐसा है जैसे कोई पानी को मत करके उसमें से नवनीत निकालना चाहे। क्या कभी कोई प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों में परिवर्तन ला सकता है? कभी वे प्रतिकूल संयोग अनुकूल लगने लगते हैं, कभी अनुकूल संयोग प्रतिकूल लगने लगते हैं, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल तो फिर भी बने रहते हैं। मैं उनको हटाना चाहता हूं, ये तो ऐसा ही प्रयत्न है जैसे मैं पानी को मत करके नवनीत निकालूं या रेत को पेल करके मैं उसमें से तेल निकालना चाहूं तो मुझे निराशा ही मिलेगी। यहां इस संसार में मेरे सारे प्रयत्न मिथ्या हैं, इसलिए वे निष्फल होते हैं और मुझे कुछ अंत में प्राप्त नहीं होता। क्योंकि संसार ऐसा ही है। उसमें सारभूत यह नहीं है कि मैं प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों को और निरंतर हर्ष विषाद का कारण बनाऊं। इस संसार में प्रतिकूल अनुकूल संयोग या कि राग द्वेष के अवसर आने पर मैं अगर समता धारण करूं तो वही मेरे लिए सारभूत है, बाकी सब निस्सार है। ये कहना चाह रहे, कुछ भी सारभूत नहीं है, ऐसा नहीं। इन संयोगों के लिए मैं जितना अधिक अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता हूं और वे अनुकूल नहीं बनते हैं, यही उनकी निस्सारता है। और मैं चाहूं तो इन संयोगों से ऊपर उठ जाऊं, इनके बीच समता भाव रखूं, तो मेरे जीवन में मैं बहुत आसानी से और सुख और शांति प्राप्त कर सकता हूं। सुख नहीं है संसार में, पर दिखने में तो आता है। पांच इंद्रिय और मन के अनुकूल विषय मिलने पर मुझे सुख मालूम पड़ता है। ये बात जुदी है कि वे पांच इंद्रिय और मन के विषय मुझे थोड़ी देर के बाद दुख भी देने लगते हैं, लेकिन मेरी अपनी तो आदत यह है कि मैं जो प्राप्त होने वाले दुख हैं उनको तो नहीं देखता हूं, जो थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है उसे ही देखता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हां सुख तो है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही मंदिर में यह चित्र दिखाते हैं, स्वयं भी देखते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये जो चित्र बना है जिसमें ये जो व्यक्ति एक पेड़ की डालियां पकड़ के लटका हुआ है, ये कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, इसको समझ तक नहीं है। देखो तो उस डाल को जिसे इसने पकड़ रखा है, दो चूहे निरंतर कुतर रहे हैं, एक दिन तो यह डाल टूट करके नीचे गिर ही जाएगी, और नीचे तो देखो चार अजगर विषधर इसे गिरते ही खाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और ये किस चीज में, किस नशे में दाखिल है, ऐसा हम अपने बच्चों को समझाते। देखो तो इसकी अनज्ञानता, अपन नहीं समझते ऐसा नहीं है, अपन भी समझते हैं, दूसरे को भी समझाते हैं, पर समझने समझाने की बात अलग है, मानने और अनुभव करने की बात बिल्कुल अलग है। और इसीलिए यह समझने समझाने की हमारी जो प्रक्रिया है विचार की, वो हमें उतना लाभ नहीं दे पाती जितना हम उस विचार को अंदर तक अनुभव कर सकें, उसे मान सकें, उसे इतना सुदृढ़ बना सकें कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। कितना सा लालच है उसे, जबकि उसे बचाने के लिए स्वर्ग के देव अपना विमान लिए खड़े हैं कि आ जाओ, पर वो कहता है कि जस्ट वेट, वन ड्रॉप मोर, थोड़ा ठहरो, आता ही हूं, एक बूंद और, उसी वृक्ष में जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है उसमें से एक एक बूंद शहद की थोड़े थोड़े समय के बाद गिरती हुई उसके मुख में आती है, उसे वह बहुत अधिक सुखकारी जान पड़ती है। ऐसे ही यहां पर हमें इस संसार में जो भी पंचेंद्रिय और मन के विषय मिले हैं वे क्षण भर के लिए लगता है कि बहुत सुखकारी हैं, लेकिन उसके साथ जो चारों तरफ फैला हुआ दुख है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब इस अज्ञानता पर क्या किया जाए, किसी और से कहा जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप को ही समझा लिया जाए कि जब इतना सब समझते हैं तब क्यों इन सुखों में हम सच्चा सुख मान बैठे, इन सुखों को छोड़ दें, छूटना तो बहुत मुश्किल है। अभी कैसे, अभी क्या हम घर जाकर के पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विश्राम ले लें क्या? अरे तो घंटे दो घंटे लिया जा सकता है, फिर भूख लगेगी तो महाराज को भी भोजन करना पड़ता है, तो उनको भी तो पंचेंद्रिय और मन के विषय उनके भी तो संपर्क में आते हैं, आते हैं, सबके आते हैं, लेकिन सिर्फ दृष्टि ये होनी चाहिए कि सच्चा सुख इसमें नहीं है, सच्चा सुख तो मुझे इनसे ऊपर उठ करके अपने ही भीतर मिलेगा। आत्म सुख ही सच्चा सुख है, भौतिक और इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसी निरंतर भावना का नाम ही संसार भावना है। और इस संसार में मुझे अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में हर्ष विषाद के अलावा और क्या मिला है, यहां और कोई सारभूत चीज नहीं है, ऐसा विचार करने का नाम संसार अनुप्रेक्षा है। ऐसा निरंतर विचार हमारे भीतर चलता रहे, लेकिन अभ्यास होने के कारण जब जब कोई चीज हमें प्राप्त होती तो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज मुझे प्राप्त हो गई, एक अच्छा संयोग मुझे प्राप्त हो गया, या एक बहुत सुख देने वाली चीज मुझे प्राप्त हो गई। ये भ्रम हमारे भीतर फिर भी बना रहता, ये अज्ञानता, ये मोह, ये गाफिलता, ये बनी रहती है। वो कैसे टूटे अगर हम निरंतर संसार की असारता और संसार में इन भौतिक सुखों में सच्चा सुख नहीं है इस विचार को निरंतरता देंगे, तो यह निरंतरता हमारे मोह को, हमारी गाफिलता को, हमारी अज्ञानता और आसक्ति को, इन सब को धीरे धीरे घटाने में कारण बनेगी। संसार से बचने के बहुत उपाय हैं जो कि हम करते हैं सुबह से शाम तक, उन्हें ही हम धर्म कहते हैं। संसार से बचने के जो उपाय हैं वे सब धर्म हैं, लेकिन अभी हम उन पर विचार नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम संसार के स्वरूप को जान करके उस संसार से विरक्त कैसे हों। जब तक हमारे भीतर संसार से विरक्ति नहीं होगी, तब तक जो भी हम संसार से बचने के उपाय करेंगे वे हमें संसार से बचा नहीं पाएंगे। और हम देख रहे हैं बिना संसार से विरक्त हुआ व्यक्ति कितने भी धार्मिक उपक्रम कर ले, लेकिन वे सब उसके संसार के बढ़ाने में भी कारण बन जाते हैं, क्योंकि वह संसार के वास्तविक स्वरूप को बिना समझे और उन उपायों को कर रहा है। जिस चीज में मेरी आसक्ति है उससे मैं कैसे बचूं, इसका उपाय कर रहा हूं और आसक्ति बनाए हूं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि अग्नि से बचने के लिए आंचल में आग के अंगारे लेकर के मैं भाग रहा हूं। ठीक ऐसा ही, एक तरफ तो मैं अपने आंचल में अपने छाती से लगाए हुए अंगारे रखे हुए हूं और कह रहा हूं कि मुझे आग से बचना और भागूं मैं। एक तरफ मैं संसार में सुख मान रहा हूं और दूसरी तरफ इस संसार से बचने के उपाय कर रहा हूं। ना, दोनों चीजें एक साथ ना होंगी। इसलिए पहले अनिवार्य है कि इससे पहले कि संसार से बचने के उपाय पर विचार किया जाए, पहले संसार की वास्तविकता पर विचार तो कर लिया जाए कि है कैसा ये, क्यों बचना चाहिए इससे, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो मुझे संसार से बचना चाहिए। संसार ठीक है अगर, तो उससे बचने की क्या आवश्यकता है। इसलिए विचार कर रहे हैं कि जगत का यह स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वरूप का विचार करने से फिर उससे बचने की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई चीज दुखकारी मालूम पड़े तो उससे बचने का सहज भाव होता है, फिर किसी से पूछने और डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही यदि हम, तो फिर उससे बचने का हमारे अंदर सहज भाव उत्पन्न हो जाता है। संसार भावना हमें संसार से बचने के लिए प्रेरणा देती है। वह बचने का उपाय नहीं है, वह मात्र बचने की प्रेरणा देने के लिए एक विचार की निरंतर प्रक्रिया है। जबकि हम संसार बढ़ाने और उसी के प्रपंच में लगे रहते हैं। एक तरफ हम संसार के दुखों की चर्चा करते हैं, संसार की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ निरंतर उसी संसार को बढ़ाने में लगे हैं। अगर एक बार संसार भावना ठीक ठीक समझ में आ जावे तो फिर संसार बढ़ाना है यह विचार ही नहीं आएगा। संसार में फिर हम कर्ता, भोक्ता और स्वामी बन करके नहीं रहेंगे। यहां से शुरुआत होगी। एकदम तो कोई संसार छोड़ नहीं सकता, छोड़ के जाओगे कहां, उसी संसार में ही। इधर से छोड़ के उधर जाओ, उधर से छोड़ के उधर जाओ, इस चीज को छोड़ के दूसरी लेना पड़ेगी, नहीं। इसलिए ऐसा उपाय नहीं बता रहे। विचार सिर्फ यह है कि मुझे संसार से बचना है, और संसार से बचना मतलब राग द्वेष से बचना, संसार से बचना मतलब मेरी आसक्ति से बचना, मेरी गाफिलता से बचना, यही तो संसार से बचना।
और इस अज्ञानता गाफिलता और आशक्ति से बचने का अच्छा उपाय क्या है? कर्ता ना बने हम संसार के, भोक्ता ना बने, स्वामी ना बने, तब फिर क्या बने? अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं यह मान करके संसार में हम रहें। अगर वास्तव में संसार अनुपेक्षा का हमने विचार किया है तो वह संसार अनुपेक्षा हमारे जीवन में यह चीज घटित कर देगी। ठीक से जीने की पद्धति संसार में अगर मिल सकती है तो इसी संसार अनुप्रेक्षा के निरंतर चिंतन से मिल सकती है। ठीक से जीने का मतलब क्या है? कर्ता बनके जीना ठीक से जीना नहीं है, किसी वस्तु के स्वामी बनकर के जीना ठीक से जीना नहीं है। मैं इन सब चीजों का भोगता हूं ऐसा विचार रखते हुए जीवन जीना, यह ठीक से जीने की पद्धति नहीं है। ठीक से जीने की पद्धति तो यह है कि मैं यहां इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हूं। सब अपने अपने पुण्य पाप का फल यहां पाते हैं और पुण्य के फलस्वरूप यहां अनुकूल संयोग मिलते हैं, पाप के उदय में यहां प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। ये बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग मुझे नहीं हटाना है, मुझे अगर प्रयत्न करना है तो अपने भीतर इन प्रतिकूल संयोगों को जुटाने और अनुकूल संयोगों को जुटाने वाले कारण को दूर करना है। ये विचार हमारे भीतर धीरे धीरे बनना शुरू होगा। अगर हम ठीक ढंग से संसार अनुपेक्षा पर विचार करेंगे तो देखिए जीवन जीने की पद्धति बहुत आसान हो जाएगी। फिर हम इस पुण्य पाप इन दोनों के चक्र में क्या स्वीकार करेंगे? पाप प्रवृत्ति से बचना, पुण्य भी मेरे लिए सिर्फ इसलिए आवश्यक है ताकि मैं पाप प्रवृत्ति से बचता रहूं। क्या बहुत जरूरी है पाप से बचने के लिए थोड़ा सा पल्ले में पुण्य? वरना पाप से बचने का विचार ही नहीं आएगा अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पाप पाप नहीं मालूम पड़ता, उनके पुण्य का उदय हो तब तो पाप पाप मालूम पड़ेगा, वरना तो पाप ही पुण्य मालूम पड़ता पाप के उदय में। यह संसार की स्थिति है। इस पर हम विचार करें और उतना पुण्य तो आवश्यक है, ऐसा ना मान के चलें कि पुण्य भी जरूरी नहीं है। पुण्य उतना आवश्यक है जिससे कि मैं पाप को पाप समझ सकूं, इतनी समझ मेरे भीतर बनी रहे, अपनी जीवन शैली में से उसे हटा सकूं और अधिक से अधिक शुभ अपने जीवन को बना सकूं। लक्ष्य मेरा शुद्ध का हमेशा बना रहे, इस पाप पुण्य और इस राग द्वेष से ऊपर उठने का। यह संसार अनुप्रेक्षा है। इस पर अपन विचार करें और अपनी जीवन पद्धति में से